गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु और दूसरे ऐसे कोई संत बैठे थे। किसी ने कहा हम हरि बोल करें, कीर्तन करें तो क्या फायदा होगा। बाबा ने कहा ये कोई खास बनिया दिखता है, सब काम पैसा कमाने के लिए होता है क्या? बच्चे खेलते तो क्या फायदा मिलेगा उनको? खेलते समय मेहनत होती है, लेकिन खेलने में इतना रस आता है कि उनको मेहनत नहीं दिखती। ऐसे तुम कर्म को ईश्वर की प्रसन्नता के लिए खेल समझकर करो। कुलीन राजकुमार की नहीं तुम कर्म को करो, ना कि मजदूर की नहीं। एक भाई साहब जा रहे थे, क्यों साहब नौकरी पे जा रहे थे? बोले नहीं नहीं मॉर्निंग वॉक लेने को जा रहा हूँ। कैसे हो आप? ठीक है ना? क्या कैसा साहब आप ठीक है? क्या हाँ देखो घूमने जा रहा हूँ। उसके पैरों में पायल थी, चेहरे पर मुस्कान थी, हृदय में प्रसन्नता थी। क्यों? कि मन भावन कर्म करने जा रहा है, प्रसन्नता से करने जा रहा है, सहज भाव से सैर करने जा रहा है। वही साहब थोड़ी देर के बाद गुजरा, क्यों साहब सैर करने जा रहे? उसने सिर कूटा, अरे यार क्या सैर करने, ड्यूटी पे जा रहा हूं। माथा कूटा, पैर तो वही के वही, सड़क तो वही के वही, साहब तो वही का वही, लेकिन अब ऑफिस में जा रहे मानो मुसीबत में जा रहे। यार ड्यूटी पे जा रहा हूं। नहीं, जैसा सैर करने को जा रहे हो ऐसा ही ड्यूटी पे जाते समय तुम्हारा चित्त आनंद का अनुभव करे, क्योंकि ये भी मेरा एक कर्म कर्तव्य है। बोझा समझ कर काम ना करो। और जो भी कठिन काम मिले, कुछ ऐसे पलायनवादी साहब होते हैं कि फाइल पर ये हमारा नहीं, उस डिपार्टमेंट का, उस डिपार्टमेंट के पास गए बाबा तो बोले उधर जाओ, धक्के खिलाते। क्यों? कि सिग्नेचर करने में डरते कहीं फंस न जाए। और बाबा जब पैसे मिलते हैं और कुछ फाइल पर वजन पड़ता है तो फिर जरा कर लेते, उस पर उसके हिस्से, उसके पल्ले नहीं। अपने हिस्से का काम तो आप करो, कभी कभार दूसरे के हिस्से के काम में भी आप उत्साह से हाथ बटाओ तो आपका काम करने का आनंद आएगा और काम करने की आपकी योग्यता बढ़ेगी। क्या करे, काम कितना भी करे पगार तो उतना ही मिलता है, फिर क्यों इतना काम करे? 2 घंटा काम करने वाले को भी उतना ही पगार मिलता है, और हाजिरी भर के भटकते रहते ऐसे हरामखोरों को भी उतना ही पगार मिलता है। तो बाबा जी हमें तो 6 कलाक करते हैं, फिर हम क्यों कस के काम करें? कस के काम करोगे तो पसीने का अन्न और पसीने का धन तुम्हारे बच्चे बच्चों को और तुम्हारे मन को प्रसन्नता देगा। और सही करके भागते फिरोगे तो तुम्हारा मन तुम्हारे को भूत की नाई भटकाता रहेगा और तुम्हारे बेटी बेटों को लवर लवरियों के चक्कर में सत्यानाश कर देगा। ये कर्म का सिद्धांत है। तुम न्यायाधीश है तो किसी नेता के दबाव में आकर या पैसे की लालच में आकर अन्याय मत करना, नहीं तो वही कर्म आपको बांधने वाला हो जाएगा। हाँ, कोई बेगुनाह है तो आप न्यायाधीश और समझते हैं तो अपने पूरे बलबूते से उसको न्याय दिलाइए, उसे बरी करिए। लेकिन कोई खून करके आया बदमाश है और पुलिस है, उनसे मिल मिला के और आप भी दे देते कि फ्री, तो ये आपका कर्म आपके लिए बोझा हो जाएगा। गुंडागर्दी को आप पोषण देने में सहायक बने तो आप प्रकृति के विधान के अनुसार दंडनीय हो जाएंगे। डोंगरे महाराज जी कथा करते थे, भागवत की कथा में डोंगरे महाराज ने कहा कि एक न्यायाधीश था, उसके पास केस गया। केस क्या गया कि कौवा बैठा था और हंस हंसिनी वहां से गुजरे, रात वासा वहां किया। कौवे की दिल बेईमान हो गई, हंसनी को अपना पत्नी बनाना चाहता था। केस कोर्ट में गया, न्यायाधीश के पास कौवा पहुंच गया कि प्लीज आप इतना काम कर दीजिए तो मैं आपको भी आपके पिता दादा के पूर्वजों के दर्शन करा दूंगा। न्यायाधीश आ गए, कोई छाबड़ी लेके जाते, कोई कवर लेके जाते। कौवा छाबड़ी कैसे उठाए, कवर कैसे ले जाए? कौवा ने कहा मैं तुमको बाप दादाओं का दर्शन करा दूंगा, पितरों का दर्शन करा दूंगा। न्यायाधीश ने कहा कि ऐसा करो कि हंसिनी को अलग जगह पर छुपा के रख के आओ और मैं ऑर्डर दूंगा कि जिसका प्यार पक्का वो हंसिनी के पास पहले पहुंचेगा। तो हंस को तो पता नहीं रहेगा, तू पहले पहुंच जाएगा तो मेरे को जजमेंट देने में कोई आपत्ति नहीं। मैं कह दूंगा कि कौवा का हंसिनी से प्यार है, अतः हंसिनी कौवे की ही पत्नी हो सकती है, ये कायदा कहता है। इस प्रकार का जजमेंट मिल गया कौवा को, अब न्यायाधीश साहब कहते कि मेरे को अपना दक्षिणा के रूप में पितरों का दर्शन कराओ। कौवा बोलता है वेलकम सर, जहां कूड़ा करकट था और कीड़े ईयरफट खत बता रहे थे, कौवा ने बोला यही तुम्हारा बाप दादा चाचा हो सकता है। बोले उनकी ऐसी गति, बोले जिसका पुत्र और पौत्र न्याय की कुर्सी पे अन्याय करेगा तो उन पितरों का तो यही हाल होगा और क्या होगा। लेकिन तुम न्याय की कुर्सी पर बैठकर जो गुनाहगार है उसको 302 के अथवा फांसी की सजा दे देते हो और वो मर जाता है तो आपको पाप नहीं लगता है। उसको पाप कर्म से रोकने के भाव से और कर्तव्य कर्म के भाव से आपने किसी को फांसी की सजा दी, आपको पाप नहीं लगेगा। लेकिन किसी निर्दोष को आप किसी के दबाव में आकर अन्याय देते हैं तो आपको कर्म का बंधन लगेगा। आप व्यापारी हैं, ग्राहक की भलाई देखकर चीज लाइए, ग्राहक को मिले और ग्राहक संतुष्ट हो, आपकी आय चले, आपके लिए कर्म कर्म योग हो जाएगा। लेकिन है तो खसखस, उसमें रेता मिलाकर कोई सस्ती बेच रहा है, आप सस्ती लाकर महंगी बेच रहे हो और खसखस खाने वाला खसखस हो जाए तो हो जाए, लेकिन मेरे को रुपया मिले आपका व्यापार बंधन वाला हो जाएगा। पोस्ट डोडे में खसखस होती है, उसमें रेती आने का कोई प्रश्न ही नहीं है। किसान लोग बोलते हैं कि हम लोग रेती मिलाते वजन बढ़ाने के लिए, दाम सस्ते में बिक जाती है, थोड़े थोड़ा कम दाम भी मिले तो हमको 2 रुपया कम मिलता है किले पे, तो 10 किलो पे हम 2 किलो 1 किलो मिला देते तो हमारा तो 10 रुपया किलो पे ज्यादा आ जाता है। लेकिन आप खरीदिए, देखिए रेती तो नहीं, मेरे ग्राहक को साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है, तो किसान मिलाना बंद कर देगा। ग्राहक के रूप में ठाकुर जी की सेवा। आप अगर उद्योगपति है तो ये विचारिए कि मेरे पास जो लेबर काम कर रहा है उसको भरपेट खाना तो मिलता है, वस्त्र तो मिलते हैं, अथवा वो पठानी ब्याज 10% और 5% भरकर कहीं दब के तो मर तो नहीं रहा। अगर ऐसी स्थिति है तो अपने तरफ से प्यार से उसको छुप के बिना ब्याज के थोड़े पैसे दीजिए और ऐसे ढंग से उसको ट्रीट करिए ताकि वो अपना घर गृहस्थी का गाड़ा ठीक से चलाए। आप अपने मजदूरों को क्या प्यार करो तो मजदूर तुम्हारे काम को प्यार करेंगे। कितने गरीब लोग हैं, सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं, उनको 50 रुपया मिलना चाहिए नहीं मिलता है, बीच में एजेंसियां घुस जाती है और एजेंसियां उनको हायर कर लेती है, रोज के 20 रुपये 25 रुपये पकड़ाती है और 25 रुपये एजेंसियां खा जाती है, तो तुम्हारा पद और साहबपन किस काम का, उन गरीबों का खड्डा तक नहीं भरता है और बीच में मलाई खाने वाले धमाधम करते हैं। नहीं, जो बेचारे 8-10 घंटा काम करते हैं उनको 50 रुपया भी नहीं मिल रहा है और जो सिग्नेचर करके इधर उधर भटक रहे हैं उनको 5-5 हजार पगार है। जिनका 5 हजार पगार है उनका भले 6 हो, मैं ना नहीं करता हूं, लेकिन 5 हजार वाला भी तत्परता से काम करे और जिसको 50 का हक है उसको 20 रुपया देकर अन्याय न करो, उसको 50 मिले ऐसा आप भी सहयोग करो तो आपका कर्तव्य है। बड़ौदा में से हजारों कुटुंब है, हजारों हजारों, कितने हजार होंगे, 80 हजार होंगे कि 90 हजार होंगे, बेचारे कितना पैसा मिलता है। हम गाड़ी जब छूटती है फैक्ट्रियों की जनता तो गाड़ी रोक कर पूछता हूँ तुम्हारी नौकरी पक्की, बोले नहीं 5 साल हो गए, तो क्या है कि ठेकेदार के तरफ से जाते हैं, उनको तो 40 रुपया 50 रुपया मिलता है, हमको बाबा जी 25 रुपये में रखते। मैं क्या फिर क्यों करते, बोले नहीं करे तो खाए क्या, इतना जुलम देश में। एक व्हील में तो बिल्कुल फुल हवा भड़ाका होने की तैयारी और दूसरा व्हील ठन ठन पाल तो कैसे तुम्हारा स्कूटर चलेगा, कैसे तुम्हारी गाड़ी चलेगी, इतना बड़ा फासला धनी और गरीब के बीच, इतना बड़ा फासला। जिसकी पक्की नौकरी हो गई उसको इतने पैसे और जो बेचारा दाढ़ी पर है उनके लिए 600-800 रुपये 1200 रुपये 900 रुपये का पगार। नहीं नहीं, उनका भी थोड़ा ख्याल करोगे तो आपका परमात्मा ख्याल करेगा। तुम दिवाली मनाओ हम राजी हैं, तुम अच्छे कपड़े पहनो हम कहते हैं जरूर पहनो, तुम मिठाई खाओ अपने बेटों को खिलाओ जरूर खिलाओ, लेकिन अड़ोस पड़ोस के किसी बेटे को भी एक कपड़े की जोड़ी दिला दो अगर उसका बाप गरीब है तो। अपने घर दिया जलाओ लेकिन किसी के घर का दिया बुझा है तो चले जाओ, 4 दिए वहां भी जला के आओ, घड़ी थोड़ी मिठाई वहां भी दे के आओ, आपका कर्म अच्छी दिवाली लाए। जिनको खूब है उनको तो खूब मिला जा रहा है, जो खा खा के अजीर्ण की बीमारी से मर रहे उनको तो ठांस ठांस के ले रहे लोग, लो मुल्ला जी लो, लो पुजारी जी लो, लो पुजारी जी लो, लेकिन जिनके हृदय में ठाकुर जी भूखा है उधर भी तो थोड़ा ख्याल करो। नारायण हरि नारायण हरि। देखिए मैं किसी मत पंथ या किसी पुजारी या किसी के लिए मेरे हृदय में कोई भी अभाव नहीं है, ये तो अनाशिता कर्म फलम की बात आई है। आप आसक्ति रहित होकर आप सत्कर्म करेंगे तो आपका काम योग बन जाएगा, आपके हृदय में भगवतीय रस आएगा, भगवतीय ज्ञान आएगा, भगवतीय आनंद आएगा, भगवतीय माधुर्य आएगा, आपके कर्म भगवानमय हो जाएंगे और भगवान संतुष्ट हो जाएगा, आप मुक्ति का अनुभव कर लेंगे। मुझे यही कहना चाहिए जो आप कर सकते हैं। अभी मैं आपको कहूं कि 25 प्राणायाम सुबह, 25 दोपहर, 25 शाम करिए और हिमालय की गुफा में 6 महीना साधना करिए और आपको इतना इतना लाभ होगा, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। जो सामने वाला नहीं कर पाता है वो कहना युक्ति युक्त नहीं है। सामने वाला कर सके और उसका हित हो वो कहना चाहिए। आप कर सकते हैं, थोड़ा ख्याल कर सकते हैं। भोजन करें तो चबा चबा के करें, स्नान करें तो रगड़ रगड़ के करें, बात करें तो विचार करके करें। आप जिनसे बात करते हैं वे मनुष्य हैं, रोबोट नहीं है, वे कोई मशीन नहीं है। जो दूसरों के मन का ख्याल करके नहीं व्यवहार करता वे व्यवहार में विफल हो जाएगा। जयराम जी की, जो दूसरों के मन का ख्याल करके व्यवहार नहीं करता वो व्यवहार में विफल हो जाएगा, और जो दूसरों के मन का ख्याल करके दूसरे के मन को संभालता हुआ व्यवहार करता है वो चाहे छोटे से छोटा आदमी है फिर भी बड़े से बड़े व्यवहार करने में सफल हो जाएगा। जो सेवा कार्य करने के लिए निकलते हैं, जो सचमुच सेवा का मूल्य जानते हैं वो तो तत्परता से सेवा खोज लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि सेवा के बिल्ले लेकर खूब वट मारते घूमेंगे। बाहर से तो देखेंगे वो सेवा सेवा, लेकिन अंदर से उनको वो आनंद नहीं आता है जो सेवा खोजने वाले सेवक को सेवा करने से जो आनंद आता है, वो दिखावट करने वाले को नहीं आता। तो आप कर्म करिए अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए, आप अहम को पोषने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी को कुचलने के लिए कर्म करते हैं तो वो कर्म बंधन हो जाता है। आप पुलिस वाले हैं चाहे पुलिस ऑफिसर हैं, आपकी ड्यूटी है तो समाज की सेवा हो, यातायात की सेवा हो, चोरों से डाकुओं से लोफरों से बहु बेटियों की समाज की रक्षा हो, उसमें आपको तत्पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पगार भी ले रहे हैं और उनके यहाँ से हफ्ता भी ले रहे हैं, ये कर्म आपको देर सवेर बांधेगा। जयराम जी की, कर्म करो लेकिन कर्म मुक्तिदायी कर्म करो। भूखे को अन्न मिले, प्यासे को पानी मिले, अनपढ़ को विद्या मिले, हारे हुए को हिम्मत मिले, बीमार को स्वास्थ्य मिले, निगुरे को गुरु मिले, अभक्त को भक्ति मिले, जिज्ञासु को ब्रह्म विद्या मिले। आपके तरफ से जितना हो सके समाज रूपी ईश्वर की भलाई का सोचते हैं और करते हैं तो आपका कर्म कर्म योग बन जाता है। एक जापानी आया था हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश में ट्रेन में यात्रा कर रहा था। उस जापानी ने गन्ना लिया और गन्ना चालू ट्रेन में गन्ना खाते खाते गन्ने के छिलटे इस ढंग से उसने काटे कि वे छिलटे व्यर्थ न हो। मुसाफरी में और कोई काम नहीं था तो गन्ने के छिलटे उसने ऐसे ढंग से गूंथे कि एक छाबड़ी बना ली। जितने में गन्ना लिया उससे 10 गुने मूल्य में उसने छाबड़ी बेच ली और गन्ना मुफ्त में खा लिया। ये जापानी आदमी का व्यवहार है। और हम करते तो क्या करते, रेलवे स्टेशन पे गन्ना खा के थूकते जाते, वहां मक्खियां बढ़ती, झाड़ू वाला भी बोले अपने झाड़ू क्या लगाना, लोग तो गंदा करके जाते हैं, अपना तो हाजिरी पूरी हो गई, मुकरदम देख रहा है, थोड़ा झाड़ू लगा, बाकी चाय पीते रहे, गप्पे हाँकते रहे, ये मेरी ड्यूटी नहीं फलाने की ड्यूटी है। स्टेशन पर कचरा, अस्पतालों में कचरा, न्यायालयों में कचरा और गंदगी, और तो क्या, महाराज सड़कों के आस पास जहां से कचरा उठाना चाहिए वहीं कचरे के ढेर पड़े, बदबू आ रही है। बड़े बड़े फ्लैट हैं और ऐसी बदबू, ऐसी उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। मच्छी मत्स्य उद्योग है, मच्छी का धंधा करते भले करें, हमारी मना नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि समाज का सिर दर्द हो जाए, समाज का मूड ऑफ हो जाए, इतनी सारी गंदगी फैला के रखें, ये तो नहीं हो सकता है। नगरपालिका में है तो आप वो कर्तव्य करिए और नगरजनों को भी चिट्ठियां लिखकर नगरपालिका को सूचना देनी चाहिए। मुझे 10 रुपए का फायदा होता और सामने वाले का 1000 बिगड़े तो मेरे 10 रुपए का मुझे बलि करना चाहिए। मुझे 1000 का फायदा होता और सामने वाले का 1000 बिगड़ता है तो मुझे बीच का रास्ता खोजना चाहिए। ये कर्म योग है, नहीं तो कर्म बांधने वाला है। इसको तो ठीक करूंगा, इसके घर के आंगन इतना ऐसा करूं, इसको तो ठीक करूंगा। तू जमदूत भी नहीं है, तू तो मनुष्य है। ठीक करना प्रकृति का काम है, ईश्वर का काम है। तेरे से हो सके तो किसी को सताकर ठीक मत कर। किसी को चने चबाने के बजाय, लोहे के चने चबाने के बजाय तू खांड खीर खिला तो तेरे पास खांड खीर आएगी, उसका कर्म वो जाने, ऐसा सोचकर अड़ोस पड़ोस में रहो। इन्होंने हमारे घर के आदमी कचरा डाल दिया, जा बेटे उनके घर के पास तू टट्टी किया कर। वो बोले रांड तो मैं खबर लूंगी उसकी। गांव गांव में ये सड़कों पे इधर उधर नहीं, एक तो प्रदूषण खूब है, दूसरा फिर और प्रदूषण बढ़ाते बढ़ाते स्वास्थ्य खराब हो जाता है, बीमारी लगी रहती। घर को साफ सुथरा रखो, शरीर को साफ सुथरा रखो और मन को भी साफ सुथरा रखने के लिए भगवान के नाम का जप करो और भगवान का ध्यान करो तो आपके लिए संसार स्वर्ग हो जाएगा।